गीता एक असाधारण ग्रंथ है। प्रज्ञा पुरुष ओशो ने अपना अनूठा दर्शन गीता के सभी 18 अध्यायों पर दिए गए लगभग 200 अमृत प्रवचनों में अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत है गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग से चुने हुए प्रवचनांश की दूसरी टेप।
वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि तं प्रवृत्तानि नानुवृत्तानि काङ्क्षते उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन्तैत्येव योऽवतिष्ठति लिङ्गिते।
पहले प्रश्न, पहला प्रश्न, साक्षी दृष्टा चैतन्य सदा ही अलग कुंवारा और अनबंधा है और सारी जीवन लीला गुणों का ही स्वयं में वर्तन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति से सत रज तम के गुणों को वैज्ञानिक या रासायनिक ढंग से शांत कर दिया जाए या व्यक्ति को सात्विक बना दिया जाए तो क्या वह उस हमेशा से मुक्त साक्षी को उपलब्ध हो जाए? यदि साक्षी सदा ही मुक्त एवं उपस्थित है तो त्रिगुणों को रासायनिक ढंग से बदल देने पर वह क्या प्रकट न हो जाए? क्या व्यक्ति तब धार्मिक नहीं हो जाए? त्रिगुणों से उत्पन्न समस्या को रासायनिक ढंग से हल करने में या साधना के माध्यम से हल करने में क्या मौलिक भिन्नता है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। और बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम में वैज्ञानिक उन विधियों को खोज लिए हैं जिनसे मनुष्य का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, जिनसे मनुष्य के शारीरिक गुणधर्म बदले जा सकते हैं और निश्चित ही उसका आचरण भिन्न हो जाए। आपके भीतर क्रोध का जो विषाक्त रासायनिक द्रव है वो अलग किया जा सकता है, उसके विपरीत तत्व आपके शरीर में डाले जा सकते हैं जो आपके आचरण को सौम्य और शांत बना देंगे। लेकिन ध्यान रखें आचरण को, आपको नहीं। आपकी काम वासना को बिना किसी साधना के मात्र शारीरिक परिवर्तन से छीन किया जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है। वासना जगाई भी जा सकती है, मिटाई भी जा सकती है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि पश्चिम में अब हमारे पास साधन उपलब्ध हैं पहली दफा मनुष्यता के इतिहास में, जब हम आदमी को बिना साधना में उतारे भी आचरण की दृष्टि से बदल सकते हैं। लेकिन ये बदलाहट ऊपरी होगी और इस बदलाहट से कोई आत्मिक उत्थान नहीं होगा। बल्कि आत्मिक उत्थान की सारी संभावना ही नष्ट हो जाएगी। उत्थान तो होगा ही नहीं। जिन परिस्थितियों के कारण उत्थान हो सकता था वे परिस्थितियां भी मिट जाएंगी। आपके भीतर क्रोध दो घटनाओं पर निर्भर है। एक तो आपके शरीर में क्रोध के परमाणु चाहिए, हार्मोन चाहिए, रस चाहिए, और दूसरा इन रसों के साथ चेतना को जोड़ने का तादात्म्य और भ्रांति चाहिए। इन दो बातों पर निर्भर है। काम वासना, आपके शरीर में काम के तत्व चाहिए और उन काम के तत्वों से जोड़ने की आकांक्षा चाहिए, एक होने की आकांक्षा चाहिए। अगर काम के तत्व भीतर न हो तो आप जुड़ना भी चाहें तो भी जुड़ ना सकेंगे, काम वासना में उतरना चाहें तो भी उतर ना सकेंगे। इसलिए आचरण आपका ब्रह्मचारी जैसा हो जाए, यद्यपि वो ब्रह्मचारी नपुंसकता का दूसरा नाम होगा, लेकिन भीतर कोई क्रांति घटित ना होगी। ये ऐसे ही जैसे मेरे हाथ में तलवार हो, तलवार के बिना मैं किसी की गर्दन न काट पाऊंगा। तलवार मेरे हाथ से छीन ली जाए तो मैं गर्दन नहीं काट पाऊंगा, इसलिए मेरा आचरण तो भिन्न हो जाएगा, गर्दन काटने का उपाय ना होगा। लेकिन गर्दन सिर्फ तलवार के कारण में नहीं काट रहा था, तलवार तो केवल उपकरण थी। भीतर मैं था हिंसा से भरा हुआ, भीतर मेरी वृत्ति थी दूसरे को नष्ट करने की, वो मेरे भीतर मौजूद रहेगी। तलवार भी मेरे हाथ में हो और भीतर मेरी वृत्ति न रह जाए तो मैं गर्दन नहीं काटूंगा। गर्दन काटने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, मेरे भीतर मूर्छा चाहिए और हाथ में तलवार चाहिए, और जब इन दोनों का संयोग हो जाए तो गर्दन कटेगी। इन दो में से एक भी हटा लिया जाए तो आचरण बदल जाएगा। अगर भीतर का तत्व हटा लिया जाए तो आचरण भी बदलेगा और आत्मा भी बदलेगी। अगर बाहर का तत्व हटा लिया जाए तो केवल आचरण बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगी। और आत्मिक क्रांति आचरण के बदलने से नहीं होती, आत्मिक क्रांति आत्मा के बदलने से होती। आचरण तो केवल छाया की भांति है। इस बात पर हमारा जोर नहीं कि आप के आचरण में ब्रह्मचर्य हो, जोर इस बात पर है कि आपके भीतर ब्रह्मचर्य हो। वो भीतर का ब्रह्मचर्य बाहर के ब्रह्मचर्य को छाया की भांति ले आएगा, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं से आपका आचरण बदला जा सकता है। भीतर आप वही होंगे क्योंकि आपकी आत्मा कोई साक्षी भाव को उपलब्ध नहीं हो जाएगी। और ध्यान रहे, साक्षी भाव किसी रासायनिक द्रव्य पर निर्भर नहीं है। ऐसा कोई रासायनिक तत्व नहीं है जिसका इंजेक्शन देने से आप में साक्षी भाव पैदा हो जाए। साक्षी भाव तो आपको साधना होगा, क्रमशः उपलब्ध करना होगा, वो लंबे संघर्ष का परिणाम होगा, निष्पत्ति होगी। साक्षी भाव तो एक आंतरिक ग्रोथ विकास है। तो रासायनिक द्रव्यों से आचरण बदला जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जो लोग धर्म को मात्र आचरण समझते हैं उनका धर्म दुनिया में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि जिन जिन बातों को वो धर्म कहते हैं वो तो वैज्ञानिक कर सकेगा। ऐसा धर्म तो मरने के गगार पे पहुंच गया। मैं जिसे धर्म कहता हूं वही टिक सकता है भविष्य में। जो लोग कहते हैं अच्छा आचरण धार्मिकता है, उनके धर्म का अब कोई उपाय नहीं, क्योंकि अच्छा आचरण तो अब इंजेक्शन से भी पैदा हो सकेगा। जिसको वो कहते हैं कि बुरा आचरण मिटाने का एक ही उपाय धर्म है, वो भी गलत है। पश्चिम में बहुत से वैज्ञानिक प्रस्ताव कर रहे हैं कि अपराधियों को दंडित करना बंद कर दिया जाए, वो भ्रांति है। अपराधियों की रासायनिक चिकित्सा की जाए। वे अपराध करते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई तत्व है रासायनिक जो विक्षिप्त हालत पैदा कर देता है, उसे बदल दिया जाए। फांसी देना फिजूल है, वर्षों तक उनको जेल में रखना व्यर्थ है, उससे उनका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि वे और भी निष्णात और पक्के अपराधी होकर वापस लौटेंगे। बाहर तो वे प्रशिक्षित नहीं थे, भीतर उनको बड़े गुरु उपलब्ध हो जाएंगे। एक आदमी चोरी करता है, वो अकेला चोरी कर रहा है, नया नया है, पकड़ में भी आ जाता है। जब आप उसे 5 साल जेल में रख देते हैं तो वहां 1000 उस्तादों के शिक्षण में रहने का मौका मिल जाता है। जो पुराने अभ्यासी हैं वो 5 साल की जेल के बाद ज्यादा कुशल चोर होकर बाहर निकलता है, उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाए। किसी को सजा देने से कोई उसके भीतर का परिवर्तन तो होता नहीं, बाहर का भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसकी आत्मा और भी कठोर हो जाती, और भी बेशर्म हो जाती। ज्यादा देर नहीं लगेगी कि वैज्ञानिक राजनीतिज्ञों को राजी कर लेंगे। चीन में, रूस में राजनीतिक अपराधियों के साथ ये प्रयोग शुरू हो गए। रूस में स्टालिन के बाद, स्टालिन के समय तक तो जो भी राजनीतिक विरोधी होता उसे वो हत्या कर डालते थे, अब वे हत्या नहीं करते। अब राजनीतिक विरोधी को सिर्फ अस्पताल से वो पागल करार दे देते, जो कि ज्यादा खतरनाक है। चिकित्सक लिख के दे देते हैं कि इसके मस्तिष्क में खराबी, इतना लिखना काफी है कि फिर उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है, और पागल खाने में उसके मस्तिष्क का इलाज शुरू कर दिया जाता है। वो इलाज, वो ना तो आदमी पागल है, ना उसको कोई रोग है, ना कोई मानसिक विक्षिप्तता है, लेकिन इलाज ये है कि उसके भीतर जो जो तत्व बगावती हैं उनको धीरे धीरे शांत कर दिया जाए। 4-6 महीने के बाद वो आदमी बाहर आ जाता है। उसकी जो बगावत थी, विद्रोह था, सरकार के विपरीत सोचने की दशा थी, वो टूट जाती। वो ज्यादा डोसाइल, ज्यादा आज्ञाकारी, अनुशासनबद्ध हो जाता। ये मारने से भी बुरा है। डेलगाडो ने सुझाव दिया है सारी दुनिया की सरकारों को कि आप युद्ध बंद नहीं कर सकते, अपराध बंद नहीं कर सकते, और 5,000 साल का मनुष्य इतिहास कह रहा है कि कितना ही समझाओ आदमी को बदला नहीं जा सकता, मेरा सुझाव मान लिया जाए। डेलगाडो का सुझाव यह है कि ऐसे तत्व विज्ञान ने खोज लिए हैं जिनको सिर्फ पानी में मिला देने की जरूरत है, हर नगर की झील में, और आपके घर में पानी तो आ ही रहा है झील से पीने के लिए, उस पानी को पीकर ही आप अपने आप लड़ने की वृत्ति से शून्य हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के सामक रासायनिक द्रव्य को पीकर जो लड़ने की वृत्ति से शांत हो जाएगा वो बुद्ध या महावीर नहीं हो जाएगा। उसमें कोई बुद्ध की गरिमा प्रकट नहीं होगी। उसमें तो क्रोध की जो थोड़ी बहुत गरिमा प्रकट होती थी वो भी बंद हो जाएगी, वो केवल निर्जीव हो जाएगा, वो सुस्त और हारा हुआ लगेगा, जैसे उसके भीतर से प्राण खींच लिए गए। वो नींद नींद में चलेगा, लड़ेगा नहीं, क्योंकि लड़ने के लिए भी जितनी ऊर्जा चाहिए वो भी उसके पास नहीं। सिर्फ न लड़ने से कोई बुद्ध नहीं होता है, बुद्ध होने से ना लड़ना निकलता है, तब एक गौरव है, गरिमा है। जब आप भीतर इतने ऊंचे शिखर को छू लेते हैं कि लड़ना क्षुद्र हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। एक तो उपाय यह है कि बिजली का बल्ब जल रहा है, हम एक डंडा मार के इसे तोड़ दें, बल्ब टूट जाएगा, बिजली लुप्त हो जाएगी। लेकिन आप डंडा मार के बिजली को नष्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम को तोड़ रहे हैं। बल्ब टूट गया, बिजली तो अभी भी धारा की तरह बही जा रही है, और जब भी बल्ब आप उपलब्ध कर देंगे बिजली फिर जल उठेगी। आपने बिजली नहीं तोड़ी, केवल बिजली के प्रकट होने की जो व्यवस्था थी वो तोड़ दी, बिजली अभी भी बह रही है। ये जो आपके शरीर के परमाणु हैं, रासायनिक परमाणु हैं, ये केवल अभिव्यक्ति के माध्यम है, इनको हटा लिया जाए तो आपके भीतर जो छिपा हुआ है वो प्रकट होना बंद हो जाएगा, फिर से डाल दिया जाए फिर प्रकट होने लगेगा। साधना का अर्थ है कि हम बिजली की धारा को ही विलीन कर रहे हैं, बल्ब को नहीं तोड़ रहे हैं। बल्ब को तोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं, बल्कि बल्ब तो उपयोगी है क्योंकि वो बताता है धारा बह रही या नहीं, धारा है या नहीं। आपके भीतर क्रोध ये बताता है कि अभी आप अज्ञान में डूबे हैं। वासना बताती है कि अभी आपके प्राण जागरूक नहीं हुए। अगर ये तत्व हमने अलग कर लिए तो क्रोध प्रकट होना बंद हो जाएगा और आपको ये पता चलना भी बंद हो जाएगा कि आप गहन अज्ञान में पड़े। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी बीमार हो और हम उसके बीमारी के लक्षण छीन लें तो उसे ये भी पता ना चले कि वो बीमार है, और ये भी ख्याल में रहे कि क्रोध एक अवसर है। क्रोध सिर्फ बुरा है ऐसे ना समझ कहते, मैं नहीं कहता, क्रोध एक अवसर है, उसका आप बुरा उपयोग कर सकते हैं और भला भी। क्रोध एक मौका है, उसमें आप मूर्छित होकर पागल हो सकते हैं, उसी में आप जागरूक होकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो अवसर को तोड़ देना उचित नहीं है। जब आप क्रोध आप में उठता है, अगर आप क्रोध के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, एक हो जाते हैं, तो आप किसी की हत्या कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप क्रोध को सजग होकर देखते रहे तो जो क्रोध किसी की हत्या बन सकता था वही क्रोध आपके भीतर नव जीवन का जन्म बन जाएगा। सिर्फ आप साक्षी होकर देखते रहे, क्रोध का धुआं उठेगा, बादल घने होंगे, लेकिन आप दूर खड़े रहेंगे, आप मुक्त होंगे, पार होंगे, अलग होंगे। ये अलग होने का अनुभव, क्रोध से ही अलग होने का अनुभव नहीं, शरीर से अलग होने का अनुभव बन जाएगा, क्योंकि क्रोध शरीर के गुणों में पैदा हो रहा है। वासना उठेगी, काम उठेगा, वे भी शरीर के गुणों की परिणतियां हैं, उनका ही वर्तन है। असली सवाल यह है कि हम उनके साथ सहयोग करके उनमें बह जाएं, या उनके साथ सहयोग तोड़ के साक्षी की तरह खड़े हो जाएं। हम उनके गुलाम हो जाएं या हम उनके मालिक हो जाएं। हम उन्हें देखें खुली आंखों से या अंधे होकर उनके पीछे चल पड़े। अवसर को मिटा देना खतरनाक है, इसलिए मैं मानता हूं कि अगर वैज्ञानिकों की सलाह मान ली गई तो लोगों का आचरण तो अच्छा हो जाएगा, लोगों का व्यवहार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आत्माएं बिल्कुल खो जाएंगी। वो दुनिया बड़ी रंगहीन होगी, बेरौनक होगी, उसमें न तो हिटलर जैसा क्रोधी होगा, स्टालिन जैसा हत्यारा होगा, नहीं होगा। उसमें बुद्ध जैसा शांत प्रज्ञा पुरुष भी नहीं होगा, उसमें सोए हुए लोग होंगे झोंबी की तरह, बेहोश, मूर्छा में चलते हुए, सम्मोहित, यंत्रवत। अगर आप क्रोध नहीं कर सकते तो ध्यान रखें आप करुणा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करुणा क्रोध के प्रति साक्षी हो जाने से पैदा होती। और अगर आपके भीतर कामवासना तोड़ दी जाए शारीरिक ढंग से, रासायनिक ढंग से, तो आपके भीतर प्रेम का भी कभी उदय नहीं होगा, क्योंकि प्रेम कामवासना का ही शुद्धतम रूपांतरण। आपके भीतर से बुरा मिटा दिया जाए तो भला भी मिट जाए। आपसे अपराध नहीं होगा ये पक्का है, लेकिन आप में साधुता का भी जन्म नहीं होगा, और आपके भीतर परमहंस होने की जो संभावना है वो सदा के लिए लोप हो जाएगी। इसलिए रासायनिक परिवर्तन से कोई क्रांति होने वाली नहीं है। वास्तविक परिवर्तन चेतना का परिवर्तन है, शरीर का नहीं। और जो भी बुराइयां हैं उनसे भयभीत न हो, परेशान न हो। सभी बुराइयां इस भांति उपयोग की जा सकती है कि सृजनात्मक हो जाएं। ऐसी कोई भी बुराई नहीं जो खाद न बन जाए और जिससे भलाई के फूल न निकल सके। और बुराई को खाद बना लेना भलाई के बीजों के लिए, उस कला का नाम ही धर्म है। जीवन में जो भी उपलब्ध है उसका ठीक ठीक सम्यक उपयोग जो भी व्यक्ति जान लेता है उसके लिए जगत में कुछ भी बुरा नहीं। वो तमस से ही प्रकाश की खोज कर लेता है, वो रजस से ही परम शून्यता में ठहर जाता है, वो सत्व से गुणातीत होने का मार्ग खोज लेता है। और ध्यान रहे, विपरीत मौजूद है, वह आपकी परीक्षा है, कसौटी, चुनौती, निकष है। उस विपरीत को नष्ट कर देने पर मनुष्य की सारी गरिमा मर जाएगी। मनुष्य का गौरव यही है कि वो चाहे तो नरक जा सकता है और चाहे तो स्वर्ग। अगर नरक जाने के सब द्वार तोड़ दिए जाएं तो साथ ही स्वर्ग जाने की सब सीढ़ियां गिर जाएंगी। ध्यान रहे, जिस सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं उसी से हम ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियां दो नहीं है। आप इस मकान तक सीढ़ियां चढ़ के आए, जिन सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं उन्हीं से आप उतरेंगे भी। इस डर से कि कहीं सीढ़ियों से कोई नीचे ना उतर जाए, हम सीढ़ियां तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तब ऊपर चढ़ने का उपाय भी समाप्त हो गया। नर्क उसी सीढ़ी का नाम है जिसका स्वर्ग। फर्क सीढ़ी में नहीं, फर्क दिशा में। जब आप काम वासना के प्रति अंधे होकर उतरते हैं तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जब काम वासना के प्रति आप आंख खोल के सजग होकर खड़े हो जाते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाने लगे। मूर्छा अधोगमन है, साक्षित ऊर्ध्वगमन है। साधना का कोई परिपूरक नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और न कभी हो सकता है। कोई सूक्ष्म उपाय नहीं है जिससे आप साधना से बच सके। साधना से गुजरना ही होगा, बिना उससे गुजरे आपका निखार पैदा नहीं होता। बिना उससे गुजरे आपके भीतर वो केंद्र नहीं जन्मता है, जिस केंद्र के आधार पर ही जीवन की परम संपदा पाई जा सकती है। अब हम सूत्र लें। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुन की जिज्ञासा करीब करीब सभी की जिज्ञासा है। हम भी जानना चाहते कि इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है। अर्जुन ऐसा पूछता है कृष्ण से, सारिपुत्र बुद्ध से पूछता है, गौतम महावीर से पूछते हैं। निरंतर जब भी कोई जागरूक पुरुष हुआ है तो उसके शिष्यों ने निश्चित ही पूछा कि लक्षण क्या है। वो जो जिस दिव्य चेतना के अवतरण की आप बात करते हैं, जिस भगवत्ता की आप बात करते हैं, उस भगवत्ता का लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई उस भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, उसका आचरण कैसा होगा। इस प्रश्न को ठीक से समझना जरूरी है। पहली तो बात ये कि लक्षण तो बाहर से बताया जा सकता, और बाहर की सब पहचान काम चलाओ होगी, क्योंकि दो गुणातीत व्यक्तियों के बाहर के लक्षण एक जैसे नहीं होंगे। इससे बड़ी अड़चन पैदा हुई है। जिन्होंने महावीर से पूछा था कि उसके लक्षण क्या हैं, वो कृष्ण को गुणातीत नहीं मान सकते, क्योंकि महावीर ने वे लक्षण बताए जो महावीर ने अनुभव किए, जो महावीर के जीवन में आए। तो महावीर का भक्त जानता है कि वो जो गुणातीत व्यक्ति है वो वस्त्र भी त्याग कर देगा, वो दिगंबर होगा। इसलिए दिगंबर लक्षण है गुणातीत का, जैन दिगंबर परंपरा में दिगंबरत्व लक्षण। जब तक वस्त्र है तब तक कोई मोक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि वस्त्र को पकड़ने का मोह बता रहा है कि तुम अभी कुछ छिपाना चाहते हो। गुणातीत कुछ भी नहीं छिपाता, वो खुली किताब की तरह है। तो महावीर से जिन्होंने गुणातीत के लक्षण समझे थे, वो बुद्ध को भी गुणातीत नहीं मानते। बुद्ध उसी समय जीवित थे, एक ही जगह मौजूद थे, बिहार में एक ही प्रांत में मौजूद थे, कभी कभी एक ही गांव में एक साथ भी मौजूद थे। महावीर को मानने वाला बुद्ध को गुणातीत नहीं मानता, स्थित प्रज्ञ नहीं मानता, क्योंकि बुद्ध कपड़ा पहने हुए, उतनी अड़चन। इसलिए महावीर को तो जैन भगवान कहते हैं, बुद्ध को महात्मा कहते हैं। करीब करीब है, मत कभी ना कभी वस्त्र भी छूट जाएंगे और किसी जन्म में ये व्यक्ति भी तीर्थंकर को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं। कृष्ण को तो मानने का कोई उपाय ही नहीं रहेगा, राम को तो किसी तरह नहीं माना जा सकता, मोहम्मद या क्राइस्ट को किसी तरह नहीं माना जा सकता कि ये गुणातीत है। अगर महावीर से लक्षण सीखें तो कठिनाई आएगी, अगर आपने कृष्ण से लक्षण सीखें तो भी कठिनाई आएगी, क्योंकि लक्षण काम चलाऊ है। वास्तविक अनुभूति तो स्वयं जब तक कोई गुणातीत ना हो जाए तब तक नहीं होगी, लेकिन ये कहना फिजूल है पूछने वाले से कि जब तू गुणातीत हो जाएगा तब जान लेगा। वो ये कहता है कि मैं नहीं हूं गुणातीत, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। तो उसके पूछने को तृप्त तो करना ही होगा। इसलिए गौण काम चलाऊ लक्षण, वे लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग गुणातीत लोगों में भिन्न भिन्न रहे, उनके भीतर की दशा तो एक है लेकिन उनके बाहर की अभिव्यक्ति अलग अलग है, वो हजार कारणों पर निर्भर है। पर हमारा मन होता है पूछने का कि लक्षण क्या है, क्योंकि हम ऊपर से चीजों को जांचना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कौन आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, हम कैसे पहचाने, कोई सिंह तो निकल नहीं आते कि अलग से दिखाई पड़ जाए कि आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वो आदमी आप ही जैसा आदमी होता है, सच तो यह है कि वो अति साधारण हो जाता है, क्योंकि असाधारण होने का जो पागलपन है वो अहंकार का हिस्सा है, वैसा आदमी अति साधारण हो जाता है। विशिष्टता की तलाश उसकी बंद हो जाती, सभी साधारण लोग असाधारण होने की खोज कर रहे हैं, इसलिए जो वस्तुतः असाधारण है वो बिल्कुल साधारण जैसा होगा।
Download from upnafm.com